मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज के अपने विषय की मैं शुरुआत करूं, आप सबको एक छोटी सी सूचना देनी है। सूचना यह देनी है कि डॉक्टर प्रीति अग्रवाल अभी गुड़गांव में हैं और गुड़गांव में उनसे सीधे फोन पर आप में से किसी की भी जो अपने जीवन की समस्याओं के बारे में उनसे परामर्श लेना चाहते हैं बातचीत नहीं हो सकेगी, लेकिन एक विकल्प अभी है और उसी विकल्प के बारे में मैं आप सबसे बताने जा रहा हूं। और विकल्प यह है कि उनका जो टैबलेट है वो अवेलेबल है और उस पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल करने के लिए उनका जो मोबाइल नंबर है वो वही है जो आप लोगों के पास पहले से ही नोट है। उनका जो मोबाइल नंबर है, यहां मैं उसे रिपीट कर रहा हूं, उनका मोबाइल नंबर है 9644624449। एक बार फिर से सुन लीजिए, 9644624449। आप इसी फोन नंबर पर उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कॉल के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए नहीं। ये लगभग यह प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक चलती रहेगी, बाद में फिर आपको सूचना दे दी जाएगी। दोस्तों, लाइफ मैनेजमेंट के तहत मैंने आप सबसे कल अपनी एक पुस्तक गीता का ज्ञान के बारे में कुछ बातें बताई थी। मैं अपनी उन्हीं बातों को आज पूरा करना चाहूंगा। देखिए, गीता पर बहुत किताबें लिखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार लिख रहा हूं या 10वीं बार लिख रहा हूं। 3500 साल लगभग यह पुस्तक पुरानी है, यानी कि गीता लिखी गई, और उसके बाद से ही लगातार गीता पर लोग अपनी अपनी टिप्पणियां, अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है, और वो ये कि जब इतनी किताबें अभी तक लिखी जा रही हैं, लिखी जाती रही हैं, तो फिर इस किताब को लिखे जाने का मकसद क्या है। दोस्तों, मैं इसके बारे में कुछ बातें आप सबके सामने रखना चाहूंगा, ताकि अगर आप इस किताब को पढ़ने के बारे में सोच रहे हों तो आपकी जो सोच है वो बहुत स्पष्ट रहे, यानी कि इस पुस्तक से आपको कुछ लाभ हो सकता है, नहीं हो सकता है, या आप अभी तक जो गीता के बारे में जानते हैं, जो पढ़ते रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी का रिपीटेशन इसमें होगा। तो थोड़ी सी बातें, देखिए, गीता को मैं एक प्रकार से वैश्विक ग्रंथ मानता हूं, आप भी शायद मानते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं इसे विश्व का पहला मनोवैज्ञानिक ग्रंथ मानता हूं, साइकोलॉजिकल बुक मानता हूं, विश्व की पहली साइकोलॉजिकल बुक, ऐसी साइकोलॉजिकल बुक जो हमारे मनोविज्ञान के इतने गहरे में जाकर उसकी जांच पड़ताल करके हमें मोती निकाल करके देती है, जो न तो किसी युग में पुराने पढ़ते हैं और न ही किसी देश विशेष के लिए वो बेकार हो जाते हैं। ये उसकी खासियत है, मैंने इस बात का बहुत ध्यान रखा है। इसमें जो मैंने एक नई दृष्टि लेकर इसकी यात्रा शुरू की और उसे संपन्न किया, उसे मैं स्पेशली बताना चाहूंगा। जब मैं गीता का इंटरप्रिटेशन कर रहा था, देखिए, इसके श्लोकों का अर्थ मैंने नहीं बताया है, बीच बीच में श्लोक उदाहरण के रूप में आए हैं जहां मैं अपनी बात प्रूफ करने के लिए मुझे जरूरी लगा कि इसका सहारा लेना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैंने एक श्लोक को लिया और उसका हिंदी में रूपांतरण कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें। दरअसल मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जब गीता लिखी गई तो गीता को जो कहने वाले हैं, लिखने वाले तो वेद व्यास है, महाभारत का ये अंश है, गीता को जो कहने वाले हैं कृष्ण, तो कृष्ण बेसिकली एक फिलॉसफर है, एक दार्शनिक है, जिन्होंने गीता का दर्शन हमें दिया। जब कोई भी दार्शनिक अपनी बात कहता है तो उसकी बात के तीन आधार होते हैं, तीन चीजों को लेकर के वो अपने विचार रखता है। एक, उसके अपने जीवन के अनुभव, तो कृष्ण के अपने जीवन के अनुभव रहे, यानी कि कृष्ण का जीवन आपको उसमें मिलेगा। दूसरी बात, उसके समय का समाज, तो कृष्ण के समय का समाज क्या था, कृष्ण के समय का समाज था महाभारत, महाभारत के जरिए ही हम उसके उस कालखंड को समझ पाते हैं। और तीसरा फिर यह कि कृष्ण किस तरह के भविष्य की रचना करना चाहते थे, यानी कि उनके दिमाग में क्या था कि इस तरह का समाज बनना चाहिए, इस तरह के व्यक्ति होने चाहिए ताकि भविष्य बेहतर हो सके। तो किसी के भी जो विचार होते हैं, स्पेशली दार्शनिक के, तो वो तीन पायदानों पर खड़े होते हैं। मैंने गीता के बारे में बात करते हुए जो उसमें विचार बताए गए हैं, जो तथ्य दिए गए हैं, जो तर्क दिए गए हैं, इन तीनों का सहारा लिया है कि अगर कृष्ण ये बात कह रहे हैं तो ये उनके अपने जीवन से आई हुई बात है, अगर कृष्ण ये बात कह रहे हैं तो ये उस समाज को देखते हुए उन्होंने उनको ये बात कहनी पड़ी, और भविष्य के किस तरह के इंसान की कृष्ण परिकल्पना कर रहे हैं। तो इस मुझे पूरी तरह से कृष्ण का जो जीवन है वो पढ़ना पड़ा, समझना पड़ा, पूरा का पूरा जो महाभारत है वो पढ़ना पड़ा, समझना पड़ा, उसके उदाहरण उसकी घटनाओं को दिमाग में रखना पड़ा, और फिर वहां से जो दर्शन शास्त्र निकल करके आते हैं कि कृष्ण चाहते क्या है, किस तरह के मनोविज्ञान के तत्वों को लेकर के बात करते हैं कि आदमी को ऐसा करना चाहिए, वो कौन से दर्शन हैं, वो कौन से श्लोक हैं, उनको पकड़ना पड़ा। और फिर इन तीनों तानों से लेकर के मैंने इसका बाना तैयार किया है, यानी कि इसकी बुनावट तैयार की है। तो यदि आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको कहीं कृष्ण का जीवन पता लगेगा, कहीं महाभारत काल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कहीं दर्शन शास्त्र के बारे में जानकारी मिलेगी, कहीं आप मनोविज्ञान के संपर्क में आएंगे। और मैं एक बात अंत में और कहना चाहूंगा कि चूंकि गीता एक थोड़ा सा कठिन किस्म का ग्रंथ माना जाता है, आप बिल्कुल मत समझिएगा कि ये कठिन है, ये बहुत सरल है, बहुत आसान है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए है, बहुत ही व्यावहारिक है, और अंत में यही कि बहुत ही मजेदार तरीके से ये किताब लिखी गई है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको मजा आएगा। तो दोस्तों, अब आपके ऊपर है कि आपका इस पुस्तक को कितना प्यार मिलता है। इन शब्दों के साथ मैं अब अपनी बात आज की समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।